हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ओबेरॉय मेंशन में आयु के दिमाग कुछ कड़वी यादें ताज़ा हो गई थीं। वो नाराज होकर अपने कमरे में चली गई। अनुष्का ने मंथन को आयु की नाराजगी का कारण बताया कि कैसे बचपन में अपने बिजनेस को टाइम देने के चलते तारा ने आयु को उनके दादाजी के पास रहने के लिए भेज दिया था, तो आनू को थोड़ा बड़े होने पर हॉस्टल में डाल दिया गया था। अनुष्का का बर्ताव थोड़ा मच्योर था, इस वजह से उसके लिए ये सब नॉर्मल था, लेकिन आयु बहुत इमोशनल थी। वो आज भी इस वजह से नाराज थी कि बचपन में तारा और जय जी ने उसे पूरा वक्त नहीं दिया था। आयु की नाराजगी की वजह जानने के बाद मंथन उससे बात करने के लिए उसके कमरे में पहुंचा। अनुष्का भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। आयु, आयु! मंथन आयु को बुलाते हुए कमरे में दाखिल हुआ। अंदर आकर उसने देखा, आयु बेड पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा तकिए में छिपा हुआ था। थकान की वजह से रोते हुए वो कब सो गई, उसे खुद को एहसास नहीं था। रोने की वजह से आयु का चेहरा लाल हो गया था। अनुष्का ने आयु को सोता हुआ देखकर मंथन की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, लगता है हमारी प्रिंसेस थकान की वजह से सो गई हैं, अब इसे जगाना ठीक नहीं। मंथन ने हल्के से हंसते हुए कहा, हाँ, और अगर इसे अभी जगाया तो गुस्सा दोगुना हो जाएगा। चलो यहीं बैठकर इसका इंतजार करते हैं। अनुष्का ने मंथन को वहां लगे काउच पर बैठने का इशारा किया। मंथन ने एक नज़र आयु के कमरे की तरफ देखा। उसका कमरा काफी बड़ा और खूबसूरत से डिजाइन किया गया था, बिल्कुल आयु की पसंद को ध्यान में रखते हुए। तभी अनुष्का एक शेल्फ से एल्बम लेकर आई और बोली, देखो मंथन, ये आयु और मेरी बचपन की तस्वीरें हैं। वो मंथन को तस्वीरें दिखाते हुए बोली, ये देखो, हमारी प्रिंसेस बचपन में भी काफी स्टबर्न थी, कैसे मुंह चढ़ा हुआ है। अनुष्का आयु को तंग करने के लिए उसे प्रिंसेस कहकर बुलाती थी। मंथन ने एल्बम की ओर झुककर देखा और हंसते हुए कहा, हैरानी नहीं हुई, आयु तो आज भी वही है, जिद्दी, गुस्सैल, लेकिन दिल की साफ। अनुष्का ने मंथन की ओर देखा, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मंथन की हंसी और उसका बेफिक्र अंदाज उसे पसंद आ रहा था। तुम्हें पता है, अनुष्का ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आयु को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो जल्दी मान भी जाती है, बस उसे थोड़ा प्यार से मनाना पड़ता है, बशर्ते आपने उसे ज्यादा हर्ट ना किया हो। मंथन ने कंधे उचकाए और बोला, मुझसे बेहतर उसे कौन जान सकता है। वैसे तुम दोनों एक जैसी दिखती हो, लेकिन तुम में एक अलग सी शांति है। आयु तो जैसे हमेशा किसी जंग के लिए तैयार रहती है। हाँ, लोग हमें एक जैसा समझते हैं, लेकिन हमारी आदतें बिल्कुल अलग हैं। मैं थोड़ा सोच सोच कर चलती हूँ, और आयु, वो तो बस अपने दिल की सुनती है। अनुष्का ने हल्के से हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में एक नरमी थी और वो बात करते करते मंथन की ओर बार बार देख रही थी। मंथन का बिंदास अंदाज, उसकी गहरी आंखें और बातों में छिपा हल्का सा मजाक उसे अनजाने में अपनी ओर खींच रहा था। मंथन का ध्यान तस्वीरों पर था, लेकिन अनुष्का का दिल धीरे धीरे उसकी बातों, उसकी मुस्कान और उसकी सादगी में उलझ रहा था। अनुष्का ने खोए हुए अंदाज में कहा, तुम काफी बेफिक्र रहते हो, फिर भी हर बात को इतने ध्यान से सुनते हो। आयु को तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता होगा। मंथन ने अनुष्का की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। हाँ, अब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन बोलते हुए मंथन के चेहरे पर मायूसी के भाव उभर आए थे। डोंट वरी, उनका डिवोर्स हो जाएगा, आरव खुराना बस एक गलती है और कुछ नहीं, अनुष्का ने उसका हाथ सहलाकर कहा। वो मंथन के बिना कहे ही उसके मायूसी का कारण समझ गई थी। अनुष्का को मंथन के साथ अच्छा लग रहा था, साथ ही उसे अब समझ आ गया था, आयु ने आरव खुराना जैसे अमीर और हैंडसम शख्स के भी आगे मंथन को क्यों चुना था। वहीं दूसरी तरफ युवानी ने जैसे ही आरव को बताया कि मंथन और आयु बिना उसे कुछ बताए लुधियाना आयु के घर चले गए थे, आरव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और आंखों में जलन साफ दिख रही थी। बिना एक शब्द बोले वो तेज कदमों से मीटिंग रूम से बाहर निकला और अपने केबिन की ओर चला गया। मीटिंग रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रियान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस हो गई मीटिंग, लगता है आज डिजायर्स में तूफान आने वाला है। लेकिन आरव सर ने तो कुछ कहा ही नहीं, मीशा बोली। युवानी ने भौहें सिकोड़ कर कहा, ये तूफान के आने से पहले की शांति है मीशा, समझ लो, आरव सर जितना चुप रहते हैं उतना ही बड़ा धमाका होने वाला है। वही आरव अपने केबिन में पहुंचा, जहां उसका गुस्सा अब और भी भड़क गया था। मंथन और आयु के एक साथ लुधियाना जाने की बात ने उसे काफी हर्ट किया। सबसे ज्यादा आरव को इस बात का गुस्सा था कि आयु ने उसे कुछ नहीं बताया और मंथन को साथ लेकर अपने घर चली गई, जबकि उसकी वजह से उसके ड्रीम प्रोजेक्ट, ख्वाब का पूरा शूट रुका हुआ था। आरव ने गुस्से में मेज पर रखी फाइल्स को जोर से पटक दिया और बड़बड़ाया, हिम्मत कैसे हुई उसकी, मुझे बिना बताए अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई, शादी मुझसे की थी या उससे? मैंने उसे मंथन के घर रहने की इजाज़त दी थी तो क्या वो अपनी मनमानी करने लगेगी? मुझसे ये सब छुपाने की क्या ज़रूरत थी? मैं कौन सा तुम्हें रोकने वाला था? चोरी छुपे तो वही काम किए जाते हैं जहाँ आप गलत हो, और तुम्हें अपनी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने ये करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब देखो मैं क्या कहता हूँ। गुस्से में तिलमिलाते हुए आरव अपने केबिन से बाहर निकला और सीधे डिज़ायर्स के लीगल एडवाइज़र और अपने पुराने स्कूल फ्रेंड मिस्टर करण मेहरा के ऑफिस की ओर चल पड़ा। करण लंबे वक्त से डिज़ायर्स के लिए काम कर रहा था और आरव का भरोसेमंद दोस्त भी था। आरव जब करण के ऑफिस पहुंचा तो करण एक ज़रूरी मीटिंग में था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरव का गुस्सा किसी के सुनने के मूड में नहीं था। वो सीधे मीटिंग रूम में घुस गया। करण, मुझे अभी बहुत ज़रूरी बात करनी है, आरव ने तेज़ आवाज़ में कहा। करण ने हैरानी से देखते हुए कहा, लेकिन आरव, मीटिंग चल रही है। मुझे अभी बात करनी है करण, अभी के अभी। इन लोगों को बोलो कि बाहर जाएं। आरव का लहजा इतना सख्त था कि करण के पास कोई चारा नहीं बचा। करण ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और अपने क्लाइंट से कहा, मिस्टर गिल, मिस्टर सिंह, मैं आपसे बाद में कॉन्टैक्ट करता हूँ। दोनों क्लाइंट्स चुपचाप बाहर चले गए। आरव करण के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा अभी भी गुस्से से लाल था। करण ने नाराज़गी भरे लहजे में कहा, तुम्हें पता है वो मेरे कितने ज़रूरी क्लाइंट्स थे और तुमने उन्हें भगा दिया। अब बताओ क्या रायता फैलाया है तुमने कि मुझसे मिलने यहाँ तक आना पड़ा? तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ डिज़ायर्स उसे कवर कर देगा। अब पॉइंट पर आते हैं। तुम्हें याद हो तो एक महीने पहले मैंने जल्दी में एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था। करण ने भौंदे जगाते हुए कहा, हाँ याद है, लेकिन तुम्हें याद है ना कि उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? हाँ, यही कि अगर कोई उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ेगा तो उसे मुझे 5 करोड़ रुपए देने होंगे, आरव ने जवाब दिया। करण ने हैरानी से कहा, नाउ डोंट टेल मी कि जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे उसने उसे तोड़ दिया और तुम उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाले हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? 5 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है, तुम्हें पता है ना? पहले तुमने इतनी जल्दी में वो अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट बनवाया और अब तुम चाहते हो कि उसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो? आरव के बिना कुछ कहे ही करण सब समझ गया था। आरव का प्लान देखकर करण सकते में आ गया। आरव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे कितने अच्छे से समझते हो करण। उस कॉन्ट्रैक्ट पर जिसने साइन किए थे वो कोई और नहीं, मेरी वाइफ है। आरव की बात सुन करण ने हंसते हुए कहा, तो इसका मतलब वो 5 करोड़ रुपए खुद डिज़ायर्स को दोगे? वो तुम्हारी वाइफ है, पैसे भी तुमसे ही मांगेगी?
नहीं, वो मुझसे पैसे नहीं लेगी। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो किसी से पैसे नहीं लेगी। देखता हूँ ऐसी कंडीशन में वो क्या करती है, आरव ने सख्त लहजे में कहा। मुझे शाम तक उसके खिलाफ फ्रॉड का केस फाइल करना है। उसने मेरा शूट पूरा किए बिना जॉब छोड़ दी और मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। अब उसे 1 हफ्ते के अंदर 5 करोड़ रुपए देने होंगे। आरव आयु को अच्छे से समझ गया था। ओबेरॉय फैमिली से होने के बावजूद उसने आरव को पैसे नहीं दिए थे। वो चाहती तो वो पहले दिन ही इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछा छुड़ा सकती थी, पर आयु को ये कतई गवारा नहीं था। करण ने हैरानी से सिर हिलाया। तुम्हें कोई समझ नहीं सकता आरव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। एक बार फिर से सोच लो, अगर ये बात मीडिया में गई तो इसका क्या असर होगा, आरव ने बेपरवाही से कहा। डोंट वरी करण, मीडिया में मेरी इमेज वैसे भी कोई खास अच्छी नहीं है। थोड़ी और नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी कि डिज़ायर्स के मालिक आरव खुराना ने अपनी पत्नी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया, लेकिन उसने जो मेरे साथ किया उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। आरव को बस आयु पर अपना गुस्सा उतारना था, उसे कुछ भी करके अपने पास बुलाना था, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। तो क्या सचमुच उसने डिज़ायर्स छोड़ दिया और उसकी वजह से तुम्हें इतना नुकसान हुआ कि तुम ये सब कर रहे हो, करण ने पूछा। नहीं, आरव ने जवाब दिया, मुझे ना तो उसमें और ना ही इस शादी में कोई दिलचस्पी है, लेकिन उसने झूठ बोलकर डिज़ायर से छुट्टी ली जिसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ, करण ने उसे समझाते हुए कहा। लेकिन ऐसा तो हर एम्प्लॉय कभी न कभी करता है, तुमने भी कभी न कभी खराब तबीयत का बहाना बनाया होगा। मैं खुद कई बार मूड न होने पर छुट्टी ले लेता हूँ, तुम्हें उसके झूठ से इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? अगर तुम्हें ये शादी निभानी ही नहीं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, आरव ने गुस्से से कहा। फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि वो आरव खुराना की वाइफ है। जब तक डिवोर्स नहीं होता उसे ये शादी निभानी पड़ेगी, और अगर वो फिर भी अपनी जिद करना चाहती है तो वो भूल जाए कि मैं उसे कभी डिवोर्स दूंगा। ये कहकर आरव करण की और बात सुने बिना ही वहाँ से निकल गया और डिज़ायर्स वापस लौट आया। वो कितना भी छुपाए पर उसके जज्बात उसकी बातों से जाहिर हो ही जाते थे। आरव के जाने बाद करण उसकी बातों को गौर से सोच रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए बड़बड़ाया, तू तो गया आरव खुराना, ये जिद, गुस्सा और अकड़ मैंने पहले भी कई बार देखी है, लेकिन इस बार कुछ और ही दिख रहा है। अब देखते हैं तुझे कब एहसास होता है कि तुझे अपनी वाइफ से प्यार हो गया है। लेकिन ये प्यार किसी की जिंदगी बर्बाद ना कर दे। खैर, इसके ऑर्डर्स तो मानने ही पड़ेंगे, लेकिन पहले दादी को सब बताना जरूरी है। करण ने तुरंत गौरवी जी को कॉल किया। उस समय गौरवी जी किसी काम से बाहर थीं। करण, कितनी बार कहा है कि ऑफिस से जुड़ा कोई काम हो तो आरव से बात करो, मैं बाहर हूँ, अभी बात नहीं कर सकती, गौरवी जी ने व्यस्त लहजे में कहा। दादी, जरूरी बात है, आपको थोड़ा वक्त देना ही होगा, करण ने जोर देकर कहा। गौरवी जी ने झुंझलाते हुए पूछा, बोलो अब आरव ने क्या किया? करण के बिना कहे ही गौरवी जी समझ गई थी बात उससे जुड़ी हुई है। करण ने गंभीर स्वर में कहा, अभी तक तो कुछ किया नहीं दादी, लेकिन करने वाला है, वो भी अपनी वाइफ के खिलाफ। मुझे नहीं पता उनके बीच क्या हुआ, लेकिन आरव उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने जा रहा है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर वो लड़की फंस गई तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। गौरवी जी ने हैरानी से कहा, क्या करूँ मैं इस लड़के का, पता नहीं क्यों हर वक्त अपनी मनमानी करता रहता है। अच्छा हुआ करण, तुमने मुझे बता दिया, चाहे आरव कुछ भी कहे तुम इस मामले में अभी कुछ मत करना। सॉरी दादी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप तो आरव को जानती हैं, उसने कहा है कि सारे प्रोसीजर्स जल्द से जल्द पूरे होने चाहिए, वो अच्छे से जानता है कि कौन सा काम कितने वक्त में होता है, मैं 2 घंटे से ज्यादा रुक नहीं पाऊंगा, करण ने लाचारी से कहा। गौरवी जी ने कहा, ठीक है, मैं ऑफिस पहुंचकर आरव से बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज तुम कुछ मत करना। करण ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है दादी, तब तक मैं सिर्फ पेपर्स तैयार करवाता हूँ, पेपर्स सबमिट आपके कॉल के बाद ही होंगे, लेकिन जो करना है जल्दी कीजिए, वरना आरव अपनी जिद में कोई गलत कदम न उठा ले। करण ने कॉल काटकर पेपर्स तैयार करने में खुद को व्यस्त कर लिया, जबकि गौरवी जी ने अपना काम जल्दी निपटाकर डिजायर्स की ओर रवाना होने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ जब आरव डिजायर्स वापस लौटा तो मीटिंग रूम खाली हो चुका था, सारी टीम अपने अपने कामों में लग गई थी। आरव ने गुस्से में सभी को वापस मीटिंग रूम में बुलाया था। उसका लहजा इतना सख्त था कि कोई भी उससे बहस करने की हिम्मत नहीं कर पाया। आरव के मीटिंग रूम में आने से पहले वो अब घबराते हुए आपस में बातें कर रहे थे। युवानी ने धीरे से मीशा से कहा, आरव सर पूरे 2 घंटे बाद लौटे हैं, पता नहीं इस दौरान किस किस की बैंड बजा रहे होंगे, अब लगता है हमारी बारी है। क्या जरूरत थी तुम्हें आयुष्का मैम और मंथन सर के एक साथ लुधियाना जाने की बात बताने की? पत्नी तो अपनी होती है, चाहे प्यार हो या ना हो, जेलसी तो होती ही है, देखा नहीं आरव सर ने वो सुनते ही तांडव शुरू कर दिया, अब पता नहीं कौन कौन उनके इस गुस्से की आग में जलने वाला है, मीशा ने उसे डांटते हुए कहा। आरव का मूड युवानी की बातों से ही ज्यादा उखड़ा था, वरना उसे तो पता तक नहीं था आयु मंथन के साथ लुधियाना गई है। लगता है अब हमें भी एक एक का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, रियान में लाचारी से कहा। वही कियान चिंता जताते हुए बोला, मैंने सुरवीन को भी बुला लिया है, बेचारी इतने दिनों बाद ऑफिस आई है और आते ही उसे ये सब झेलना पड़ेगा। रियान ने गहरी सांस लेकर कहा, सुहानी भी तो नहीं आई, मंथन भी गायब है, अब सारी आफत हम पर ही आने वाली है। उनकी बातचीत के दौरान आरव तेज कदमों से मीटिंग रूम में दाखिल हुआ और उसकी मौजूदगी से सारा कमरा खामोश हो गया। आरव जिस अंदाज में अंदर आया था वो सब पहले ही खुद को एक नए झटके के लिए तैयार करने लगे। क क क